हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तारा परी ने जैसे ही ये देखा कि एक बड़ा ही मोटा भयानक सांप उसके सासू माँ यानी कि करिश्मा जी के चारों ओर गोल गोल चक्कर काट रहा था, और फिर अचानक वो सांप ठीक करिश्मा जी के पीछे रुक गया था और अपना बड़ा सा मुंह फाड़कर करिश्मा जी की ओर देखने लगा था। जैसे ही तारा परी ने ये सब कुछ देखा, उसे लगने लगा था कि जरूर ये सांप अब करिश्मा मॉम पर हमला करेगा। इसीलिए तारा जल्दी से अपनी बुढ़िया के वेश से अपने असली वश में आने लगी थी और उस सांप का पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन जैसे ही वो दो कदम आगे बढ़ी, उसने देखा उस सांप ने करिश्मा जी को कोई हानि कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो सिर्फ उसके उनके कानों के पास जाकर अपनी बड़ी सी लंबी जीभ के द्वारा कुछ उनके कान में बोला था। तारा कुछ भी समझ में नहीं पाई थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये सांप चाहता तो करिश्मा जी को ऐसे के ऐसे ही अपने बड़े से मुंह में रख सकता था, लेकिन इस सांप ने ऐसा कुछ नहीं किया था। केवल अपनी बड़ी सी जीभ निकालकर उनके कान के पास ले गया था, और जैसे ही सांप की जीभ ने करिश्मा जी के कानों को छुआ, करिश्मा जी का ध्यान भंग हो चुका था। और जैसे ही करिश्मा जी ने आंखें खोलकर अपने चारों ओर इधर उधर देखा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया था और वो सांप गायब हो गया था। तारा परी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से हुआ क्या। अभी तो वो सांप उसकी आंखों के सामने था और अब अचानक से वो गायब हो गया था। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा था? सिर्फ सुबह होने तक ही करिश्मा जी तो अनुष्ठान करना था, और अब सुबह होने में काफी कम समय रह गया था, लेकिन उससे पहले ही उसे सांप ने करिश्मा जी का अनुष्ठान भंग कर दिया था। तारा परी ने देखा अब करिश्मा जी जाग चुकी थी और अपने आसपास अच्छी तरह से देख रही थी कि किसने उसका ध्यान भंग किया है। तारा परी करिश्मा जी की नज़रों में नहीं आना चाहती थी, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से उड़ान भरकर आकाश में पहुँच गई थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी अगर करिश्मा जी ने तारा को उस वक्त वहाँ देख लिया, चाहे बुढ़िया के वेश में ही क्यों न देख लिया, तो करिश्मा जी को यही लगेगा कि इस बुढ़िया ने या फिर किसी और काली शक्ति में ही मेरा ध्यान भंग किया है। तारा परी ऊपर आसमान से करिश्मा जी को देख रही थी। वो अभी देखना चाहती थी कि अब करिश्मा जी क्या करती है, क्योंकि अब करिश्मा जी का ध्यान भंग हो चुका था तो उनका अनुष्ठान में बैठने का अब कोई इरादा नहीं था। इसीलिए वो एक बार फिर मायूस होकर चारों ओर देखती हुई अपने घर की ओर रवाना हो चुकी थी। वहीं तारा परी भी करिश्मा जी को जंगल से बाहर निकलते हुए देख चुकी थी और वो समझ गई थी कि वो घर ही जा रही है, इसीलिए तारा परी भी जल्दी से अपने घर की ओर रवाना हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर ताली शक्तियों के मालिक अमित जी भिखारन लड़की को अपने घर पर लेकर आया था। मल्लिका ने कुछ केमिकल्स डालकर उसे नहाने के लिए कह दिया था और कुछ कपड़े उसके लिए रख दिए थे। उस लड़की को यकीन ही नहीं हो रहा था ये सब कुछ उसके लिए हो रहा था। जब वो नहाकर निकली, उस बाथटब में इतना ज्यादा गंदा काला पानी था तो वो बहुत बुरी तरह से हैरान हो गई थी। वो सोचने लगी थी क्या उसके जिस्म में इतनी ज्यादा गंदगी है, क्योंकि वो अब एक बार फिर साफ सुथरे पानी से नहाई थी और उसके बाद उसका जिस्म पूरी तरह से साफ हो चुका था और उसमें से अब हल्की हल्की खुशबू आने लगी थी। उस लड़की ने मल्लिका के दिए हुए कपड़े पहन लिए थे और जैसे ही वो बाहर निकली, मल्लिका और काली शक्तियों का मालिक अमित उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि जिस लड़की के मुंह पर मैली कुलची जमी हुई थी और एकदम काली स्याह वो दिखाई दे रही थी, अब वो लड़की दूध जैसी गोरी एकदम सफ़ेद चिट्टी दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर मल्लिका के भी होश उड़ गए थे। मल्लिका अब उसके सामने खुद को काफ़ी कम समझने लगी थी, क्योंकि उसने तो सोचा था कि ये लड़की काले रंग की है और ज्यादा ही बदसूरत सी इसकी सूरत है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो लड़की एकदम सफेद कोरी चिट्टी थी और ऊपर से उसका कटीला बदन जो कमाल का खूबसूरत था। वो लड़की अमित और मल्लिका की ओर हैरानी से देख रही थी और ये सोच रही थी कि ये दोनों आखिर उसे इस तरह से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उसने तो आज तक अपने आप को ढंग से देखा ही नहीं था। आईने के नाम पर अगर उनके घर में कुछ था तो एक मामूली से स्कूटर का टूटा हुआ आईना था जो उसके बाबा कभी कबाड़ा से ले आए थे। उसी में वो लोग अपनी शक्ल सूरत देखा करते थे, लेकिन आज पहली बार वो इतने बड़े घर में आई थी और अच्छी तरह से नहा धोकर उसने अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने थे। तब अमित उसे देखा हुआ उसके पास आया था और बोला था, तो तुम इतनी खूबसूरत हो तो फिर बदसूरत बनकर क्यों रहती हो और अपने चेहरे पर कालिश लगाकर क्यों रहती हो। जैसे ही उस लड़की ने अमित की बात सुनी वो हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने तो अपने आप को ऐसा ही पाया था, क्योंकि उसकी माँ बचपन से ही उसे खुद तैयार किया करती थी और क्रीम के नाम पर उसके मुंह पर थोड़ी थोड़ी कालिश लगा दिया करती थी, क्योंकि उसकी माँ अच्छी तरह से जानती थी कि अगर जमाने की नज़र उसकी खूबसूरत बेटी पर पड़ गई तो उसके साथ क्या होगा, या तो वो किसी न किसी कोठे की शान होगी या फिर किसी अमीर आदमी के हाथों अपनी इज्जत गवा बैठेगी। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और अपनी गरीबी को देखते हुए उसकी माँ ने हमेशा से ही अपनी खूबसूरत सी बेटी को बदसूरत बनाकर रखा था, लेकिन काली शक्तियों के मालिक अमित की नज़र उसके गठीले बदन पर चली गई थी, जिसके बाद उसे अपने साथ ले आया था और अब उसका असली रूप सबके सामने आ गया था। अमित की बात सुनकर वो लड़की थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली थी, ये आप क्या कह रहे हैं साहब, हम तो वैसे ही काफी ज्यादा बदसूरत हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे पास जो स्कूटर का शीशा है उसमें हम देखते हैं अपने आप को, हम बहुत बुरे लगते हैं, इसीलिए हम कई कई दिन शीशा भी नहीं देखते हैं, उस लड़की ने अपने सीधे स्वभाव में कहा था। उसकी बात सुनकर अमित जोरों से हंसने लगा था, लेकिन मल्लिका को उस लड़की को देखकर जलन होने लगी थी, क्योंकि वो लड़की उसके सामने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और मल्लिका की जो खूबसूरती थी वो तो बनावटी थी, लेकिन उस लड़की की खूबसूरती एकदम उसकी अपनी थी और ऊपर से वो एक कुंवारी लड़की थी। तभी काली शक्तियों के मालिक अमित ने उसे लड़की के कंधों से पकड़ लिया था और बोला था, आओ मेरे साथ, और वो उसे उस लाल रंग के कमरे में ले गया था और उसने वहाँ का जो बड़ा ही खूबसूरत सा आईना था उसके सामने उसे लड़की को ले जाकर खड़ा कर दिया था और उसे लड़की ने जैसे ही अपने आप को आईने में देखा तो वो पूरी तरह से हैरान हो गई थी और खुद को छूकर वो बार बार आईने में देख रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या ये वही है और ये इतनी खूबसूरत अचानक से कैसे हो गई। बार बार आईने को छूकर वो झूमे जा रही थी और हंसती जा रही थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी भी खूबसूरत हो सकती थी। तभी काली शक्तियों के मालिक अमित ने उसे कंधों से पकड़कर अपने बेड पर बैठा दिया था और कहा था, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ।
पहले तो मैंने सोचा था कि तुम एक मामूली सी शक्ल सूरत वाली लड़की हो, तो मैं तुमसे सिर्फ एक दिन अपना काम निकालूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अब तुम्हारी खूबसूरती देखने के बाद मेरा इरादा बदल गया है और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। काली शक्तियों के मालिक अमित ने जैसे ही उसे लड़की से ये कहा, उसे लड़की का हैरानी के मारे बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो गया था और वो सोचने लगी थी, इतना बड़ा अमीर रईस ज्यादा मुझसे शादी करना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं था। काली शक्तियों का मालिक अमित अच्छी तरह से जानता था, अगर उसने उसे लड़की के साथ एक रात बिता भी ली और उसके बाद उसकी जान भी ले ली तो उसकी शक्तियों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन अगर उसने शादी करके इस लड़की को हमेशा के लिए अपने पास रख लिया तो जब चाहे वो औरत के जिस्म को छू सकता था और अपना बना सकता था, और फिर जो शुद्ध अशुद्ध का मसला था वो भी उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा, और फिर वो चाहे किसी भी लड़की को आराम से छू सकता था, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता था और न ही उसकी किसी भी शक्ति पर कोई किसी तरह का कोई फर्क पड़ता। और उस लड़की की खूबसूरती को देखकर अमित ने उससे शादी करने का इरादा कर लिया था और सोच लिया था, तिलस्मी पत्थर हासिल करने के बाद जब इस लड़की से मेरा खूब मन भर जाएगा फिर मैं इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर दूंगा। काली शक्तियों के मालिक अमित के दिलो दिमाग में इस वक्त काफी सारे उस लड़की को लेकर ख्यालात जन्म लेने लगे थे, लेकिन जैसे ही उसने उस लड़के से शादी की बात की वो लड़की शर्माने लगी थी, क्योंकि अमित दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट और डैशिंग था। काली शक्तियां उसके पास इतनी ज्यादा थीं कि उसने अपने आप को इतनी अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा हुआ था कि वो कभी काफी लड़कियों का क्रश भी था। अमित में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो उसके सिर्फ और सिर्फ दिमाग में। उस लड़की को शर्माता हुआ देखकर अमित ने उससे कहा था, तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अमित की बात सुनकर उसे लड़की ने शर्माकर अपने दोनों हाथों को अपने मुंह से छुपा लिया था और बोली थी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा साहब, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं वैसे मुझे लगा था मेरी पूरी जिंदगी इसी तरह से रोड पर सड़क पर भीख मांगते मांगते कट जाएगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था इतना बड़ा राजा महाराजा टाइप आदमी मेरी जिंदगी में आएगा। बिल्कुल मैं आपसे शादी बनाएगा, शादी बनाएगा। और वैसे भी ये तो मेरी खुशकिस्मती में आती है कि आप जैसा आदमी मेरी जिंदगी में आया, उस लड़की ने अपनी टपोरी भाषा में अमित से कहा था। तब अमित ने उस लड़की से कहा था कि ठीक है, तुम अब अच्छी तरह से तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो, लेकिन हाँ, सबसे पहले तुम अपना नाम तो बताओ। हम इतनी देर से एक दूसरे से मिले हुए हैं और शादी भी करने वाले हैं, और अभी तक हमें मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं पता। काली शक्तियों के मालिक अमित की बात सुनकर वो लड़की अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी थी और फिर कुछ सोचते हुए बोली थी, हमारा नाम गुड्डी है। दोस्तों, आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा प्लीज जरूर बताइए, और अपने कमेंट्स और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।